श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। एक अद्भुत बात है कि भगवान इसमें खर्चे वाली कोई बात नहीं बता रहे हैं। इस पूरे जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने हृदय में धारण किया रहता है हर समय। तो भगवान कह रहे हैं अपने चित्त में अन्य व्यक्तियों को लाने के बजाय भगवान को लाएं। एक बात आप लोगों को विचार करनी होगी कि ये जो नित्य स्मरण है कृष्ण का, वो तभी हो सकता है जब हमें भगवान से प्रेम हो। क्योंकि भगवान से प्रेम होने पे ही, या जिस भी वस्तु से या व्यक्ति से हमें प्रेम होता है, वही हमारे चिंतन में आती है। तो अगर नहीं भी है प्रेम, तो बार बार भगवान को अपने चित्त में लाने से अभ्यास योग साधना भक्ति के द्वारा हम भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति कर लेंगे, तो ये सहज हो जाएगा। लेकिन इस समय हमें चेष्टा के रूप में प्रयास करना है, चेष्टा करनी है कि बार बार कृष्ण का स्मरण हो। और जहाँ बोल रहे हैं भगवान कि आप मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो इन चारों ही चीज़ों में कोई हमारा कोई खास खर्चा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाभ बहुत बहुत बड़ा है, और वो लाभ है शाश्वत भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति। हम तात्पर्य को देखेंगे, और तात्पर्य बड़ा है तो थोड़ा सा विचार करेंगे एक एक लाइन के ऊपर। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। और जगत का कलमश यही है कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण से द्वेष करता है और भगवान के भक्ति करने में इच्छुक नहीं है। तो मूलभूत कारण हमारा जगत में रहने का है भगवान से विद्वेष। तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए या इसको उसका विरोध करने के लिए एकमात्र तरीका है विशुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ का कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। यानी कि इस श्लोक का अर्थ तो यही है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बने। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, कृष्ण का भक्त नहीं बनना है, शिव बाबा का भक्त बनना है या ब्रह्म का भक्त बनना है। और ऐसा कुछ बात भगवान यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। जैसे कि ब्रह्म से प्रेम करना ये संभव नहीं है। प्रेम हम एक व्यक्ति से करते हैं, लाइट से नहीं करते। तो निराकार ब्रह्म से कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है। तो ये चीजें केवल भाष्यकारों की कृष्ण के प्रति जो द्वेष है उसी को इंगित करता है। और इसी कारण से वो अपने पाठकों का ध्यान भगवान कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, परब्रह्म है, उससे हटा करके किसी इतर वस्तु में, किसी अलग वस्तु में लगाते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? क्योंकि ऐसे भाष्यकार बोलते हैं कि कृष्ण के शरण में नहीं जाना है, कृष्ण परायण नहीं होना है, अपितु कृष्ण के अंदर अव्यक्त ब्रह्म है उसके परायण होना है। कृष्ण के अंदर और बाहर कुछ भी नहीं है। कृष्ण के अंदर और बाहर ये जैसा द्वैतता नहीं है, जैसे हमारी जगत हमारे हमसे बाहर है और हम इस जगत के अंदर हैं, तो इस प्रकार की द्वैतता भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। इस कारण से ये सोचना ये दिखाता है कि भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण को एक समान व्यक्ति मान रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण के चरणों में सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। कुछ समय पहले मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा और एक लाइन देख के ही मुझे इतना क्रोध आया। वो बोले कि राम और कृष्ण ईश्वर नहीं है, निरंकार ईश्वर है। उस मूर्ख को पता नहीं है कि ईश्वर का मतलब ही होता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर एक व्यक्ति होता है, लाइट कंट्रोलर नहीं हो सकता है। तो आजकल के समाज में लोगों को शब्दों का अर्थ भी पता नहीं है और लोग उसको बड़ा बड़े हल्के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा की अगर आप बात करें तो एक व्यक्ति है, जब पिता की बात करेंगे तो एक व्यक्ति है और व्यक्ति कृष्ण है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, इसीलिए भगवान को अद्वैय बोलते हैं। अद्वैय का अर्थ है उनके अंदर द्वैतता नहीं है, जैसा कि पूर्व पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष में उद्धृत किया है। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से भगवान में और भगवान के नाम में, भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को ना समझ पाने के कारण जो अल्प ज्ञानी भाष्यकार हैं वो अपनी मानसिकता को या अपने मानसिक ऊहपोह को थोपते हैं भगवान के ऊपर। देखिए, एक भौतिक जगत में बद्ध आत्मा तो यही अनुभव करेगी कि भाई शरीर और आत्मा में अंतर है, अगर थोड़ी बुद्धि होगी तो इस चीज का आरोप, इस गुण का आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान पूरी तरह से चिन्मय तत्व हैं और उनके शरीर और उनके आत्मा में अंतर जैसा कोई नहीं होता, वो पूरी तरह से चिन्मय घन चिदघन है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है और इसको भगवान ने 9वें अध्याय में इसके लिए डांट भी लगाई थी। यद्यपि वह यह है कृष्ण तत्व के प्रति निरीह ज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, प्रभुपाद आप बोल रहे हैं भाई गीता बिकेगी तो उनकी प्रतियां भी बिकेंगी और उसका धन जो है उनको प्राप्त होगा। अपितु अन्य अन्य भाष्यकारों का ये प्रयास होता है कि वो हमेशा कुछ नया बताए, जबकि श्रीदा प्रभुपाद जी के हम जैसे टीका पढ़ रहे हैं तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बातें बताई हैं उसी के मार्गानुसार, जैसे आप देखिए श्रीदा प्रभुपाद जी यहाँ पे कूर पुराण और अपने गुरु महाराज के उद्धरण को ही उद्धृत कर रहे हैं। तो ये एक प्रामाणिक गुरु के लक्षण होता है कि वो शास्त्र से विरुद्ध कुछ नहीं बोलते और शास्त्र को भी पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा के अनुसार ही समझते हैं और समझाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। यहाँ पे अब बात आ रही है मद भक्तों को समझाया जा रहा है। मद भक्तों का अर्थ है, इससे पहले एक और बात समझ लीजिए कि मन मना का अर्थ था कि जब हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो ये इस अज्ञान के आधार पर भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करना है कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म है, इसलिए मन मना शब्द पे प्रभुपाद जी ने ये बात बोली है। और अब मद भक्त बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण करना है तो अनुकूल भाव से करना है। अनन्य भक्ति या उत्तमा भक्ति का अर्थ यही है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से चेष्टा की जाए। तो कंस और हिरण्यकश्यपु भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, विष्णु का स्मरण कर रहे थे, लेकिन प्रतिकूल भाव से, तो इसलिए उनको भक्त नहीं कहा जाएगा। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इसी प्रकार से पौंड्रक नाम का व्यक्ति था जो भगवान वासुदेव कृष्ण का हमेशा चिंतन किया करता था। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। और भक्तिमय प्रेम का अर्थ आप समझ रहे हैं अनुकूल भाव, कृष्ण को प्रसन्न करना इस स्प्रिया के साथ। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। अब निरंतर का अर्थ यही है कि नित्य भाव, नित्य रूप से। एक साधक के लिए निरंतर का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि 24 घंटे, क्योंकि वो संभव नहीं है उसके लिए। हमें सोना होता है, खाना होता है, शरीर का ध्यान रखना होता है, बहुत से लोगों को नौकरी भी करने जाना होता है। लेकिन यहाँ पर निरंतर का अर्थ है नित्य रूप से, हर दिन पूरा जीवन इस प्रकार से भगवान कृष्ण के तत्व का अनुशीलन करे। कृष्ण तत्व का अनुशीलन का अर्थ होता है भगवान के तत्व को समझने का प्रयास करे भक्तों के मुख से और भक्तों और अपनी साधना के द्वारा भी। तो यह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है, इसी की चर्चा हमने अभी करी थी। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। और इस चीज को भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं भगवद गीता में, मोघश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। कि जो लोग भगवान को ये मानते हैं कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति हैं, उनका कर्म का प्रयास, भगवत धाम जाने का प्रयास या मुक्ति का प्रयास, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति का प्रयास सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को भगवान के तत्व के बारे में स्पष्ट जानना पड़ेगा प्रामाणिक वैष्णवों से, गुरुजनों से, कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अद्वैय हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी मध्याजी शब्द को समझा रहे हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। तो यहाँ पे नमस्कुरु को समझा रहे हैं। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना, उनके लिए नैवेद्य बनाना, कुछ भगवान के लिए भोग बनाना, उनका गुणगान करना वाणी से इस प्रकार से, और मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, इस प्रकार से हर तरह से हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, यानी कि कृष्ण भक्ति से पूरित हो जाएगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कपटी भाष्यकारों से सुनना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए प्रभुपाद जी कुछ भाष्यकारों के बारे में बोल रहे हैं तो हमें ये कौतूहल नहीं होना चाहिए कि भाष्यकार क्या है और क्या बोलते हैं। इसको सुनने से हमारा समय व्यर्थ होगा और हमारी जो बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाएगी। इसीलिए सबसे अच्छा रिकमेंडेशन ये है कि जो श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता है, इसके अतिरिक्त और कोई भगवद गीता ना पढ़ा जाए और कोई भगवद गीता का संस्करण ना पढ़ा जाए, क्योंकि केवल हमारे मन को वो दिग्भ्रमित कर देगा, भ्रमित कर देगा। तो बेहतर है कि भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने साक्षात प्रस्तुत करी है, उसको ही हम सुने। भगवद गीता के सातवें तथा आठवें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है, अर्थात शुद्ध भक्ति की, अनन्य भक्ति की। जो पूर्णतः शुद्ध शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे आज तक कि ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्म ज्योति और योगी लोग परमात्मा के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है और इसका उसका अभ्यास वो साधना के समय भी करता है, क्योंकि विग्रह की अर्चा विग्रह की सेवा करने से उसे साक्षात भगवान की सेवा करने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। अभी कौन सा पद है तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उसका चित्त इस विश्वास से पूरित है कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है, भले ही उस कर्तव्य का पूरा से वो पूरी पूरी तरह से पालन ना कर सके। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष मानना चाहिए। निरंतर का अर्थ आप समझ गए होंगे, रोज कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। असली भक्त है फसली भक्त नहीं है। फसली भक्त मतलब सीजनल भक्त, जब अच्छा समय आ रहा है तो भक्ति कर रहा है, उसके बाद भक्ति करना छोड़ दिया, ना। असली भक्त है जो लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, सुख दुख हानि लाभ सभी स्थिति में। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चतुकम। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो प्रभुपाद ने बताई है वो ये है कि जब अगर कोई व्यक्ति नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का भजन करता रहेगा तो अपने आप क्रमशः उसके जो भौतिक इंक्लिनेशंस हैं, जो भौतिक आसक्तियां हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और वो भगवान के प्रति और अग्रसर होता चला जाएगा, अंततो गत्वा भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करेगा। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई भी अवसर नहीं होता, नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को अग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए, अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो बहुत सुंदर बात है, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले को भौतिक सुख तो मिलता ही है और साथ साथ भगवान का धाम मिलता है, लेकिन देवताओं की पूजा करने वाले को मात्र भौतिक सुख मिलता है, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो ऐसा नहीं होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की ही अनन्य भक्ति में लगता है और चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब हम लोग थोड़ा आचार्य की कमेंट्री को देखेंगे। श्रीला बलदेव विद्या भूषण गीता भूषण नामक भाष्य में बोलते हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने राजा के प्रति समर्पित हो सकता है, जो राजा का सेवक है, तो वो अपने पत्नी के बारे में सोचेगा, वो अन्य वस्तुओं के बारे में भी सोचेगा और राजा के बारे में सोचेगा, राजा के बारे में भी सोचेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं है राजा का, क्योंकि वो राजा की आवश्यकताओं से अपनी आवश्यकताओं की पहचान नहीं करता। जो राजा चाहता है वही मैं चाहूंगा, ऐसा नहीं सोचता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार के भक्त मत बनो, यानी कुछ कृष्ण के लिए और कुछ मेरे लिए, ऐसा नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए। तुमको भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमेशा मेरा स्मरण करे कृष्ण का, मन मना भव मद भक्त। तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए जैसा एक, ये जो भगवान का स्मरण है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि शहद को अगर आप कहीं बहाएं तो उसमें जो उसका तार है, शहद का तार है, वो कभी टूटता नहीं। उसी प्रकार से तुम्हारा मन लगातार मेरे गुणों की का स्मरण करता रहे। मुझ का अर्थ है भगवान के बेटे, सॉरी वसुदेव जी के बेटे, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का। और क्या स्मरण करना है? भगवान की दिव्य गुणों का स्मरण करना है। किस प्रकार से भगवान का श्यामल वर्ण है उसका स्मरण करना है। कैसे पूरे जगत में के ईश्वर है भगवान कृष्ण, उसका स्मरण करना है। और भगवान किस प्रकार से भक्तों पर सर्वोत्कृष्ट आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसका स्मरण करना है। और इस प्रकार से फिर मेरी पूजा करो और मेरे दिव्य स्वरूप की पूजा करते हुए उसमें उसमें अपने चित्त को आविष्ट कर दो। भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, विग्रह है, श्री विग्रह, उसकी पूजा करते करते भगवान का भक्तों का चित्त उसमें ही लगा रहता है। कैसे भगवान का ड्रेसिंग करना है, आज भगवान कैसे लग रहे थे, ये भक्त देखते देखते इस प्रकार से पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं और भगवान के इस सुंदर रूप के चरणों में प्रेम से युक्त, तीव्र प्रेम से युक्त प्रणाम करें। और इस प्रकार से अपने मन और अपने शरीर को आत्मनम युक्तवा भगवान को समर्पित करके, भगवान के शरण लेकर के, मतपरायण होकर के, वो निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंच जाएगा। मतपरायण अर्क अर्थ ही होता है कि अपनी हर इंद्रिय को, तन, अपने वाणी को और अपने मन को लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखना। और इस सेवा के माध्यम से भगवान के भक्त भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम को जागृत कर लेते हैं, जो कि उनके हृदय में सुप्तावस्था में है। इसका अर्थ ये है, और एक इसका अर्थ और भी है कि मतपरायण का अर्थ है कि भक्त उन क्रियाओं को, भक्ति की क्रियाओं को पहले समर्पित करता है और फिर करता है भगवान के लिए। क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि ये क्रियाएं ही भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं। एक भक्त की सारी क्रियाएं, उसका पूरा जीवन का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो वेदों में वर्णित कुछ क्रियाएं करेगा और उसके बाद उसको भगवान कृष्ण को समर्पित करेगा, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अनन्य भक्ति की जाती है, जिसमें पहले क्रिया को समर्पित करते हैं और फिर क्रिया को करते हैं। इस अध्याय में भक्ति जो गंगा की तरह है, उसका वर्णन किया गया है जो संपर्क में आ रहे मात्र से, जैसे माता गंगा, जिस जो कोई व्यक्ति माता गंगा के संपर्क में आता है तो चाहे वो सही समय पे आए हो या नहीं समय पे आए हो, या वो व्यक्ति योग्यता हो या नहीं योग्यता हो, वो माता गंगा के संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार ये शुद्ध भक्ति, ये भगवद गीता का राजगुह्य ज्ञान है, और इसके संपर्क में आने से कोई पतित से पतित जीव भी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो ये बात श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बताई, तो हमने थोड़ा ऐड किया इस क्लास में। हरे कृष्णा।